તારીખ 14/2/1999 શ્રી સ્વાનુભૂતિ દર્શન પ્રશ્ન 444 અને 445 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું ભાવનગરમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 385
પ્રયોગનો અસર અથવા ફાયદો લાભ તરત જ મળે છે. આ એક સારી પદ્ધતિમાં બહુ મોટો આશાસ્પદ અથવા પ્રેરણાસ્પદ મુદ્દો છે. કોઈ પણ ભૂમિકામાં પ્રયોગનો ફાયદો સરસ છે. જેમ કે અવલોકન કરે તો પણ જે વિભાગનો જે રાગનું અવલોકન થાય એનો રસ તરત જ તૂટે. એ જ વસ્તુ ઇન્સ્ટન્ટ પ્રયોગ કા ફાયદા કહેવાય. ઉસી વખત ઉસકો લાભ હોતા હૈ તો ઉસકો બાત યહાં કહી હૈ કે બુદ્ધિ સે એક વાર રાગ કો જુદા ક્યા ઓર પીછે પહેલે કે માફિક વૈસા કા વૈસા હો જાય તો ઉસકે અભ્યાસ કી ખામી હૈ. અભ્યાસ મેં પ્રેક્ટિસ કી ખામી પ્રયોગ થી ખાતી પ્રયોગ મેં એસા નહીં હોતા ફરક પડી જતા હૈ. આપને જીતના પ્રયોગ ક્યા ઉસકા ફાયદા પરિણામ પર હૈ ઓર પ્રયોગ સે પરિણતિ ભી બદલ સકતી હૈ. જૈસે આપકો વેદના का उदय बार बार आता है और उस वेदना में आप प्रयोग भी करते हैं तो सही प्रयोग अगर होता हो तो दोबारा जो वेदना है उसमें फर्क पड़ेगा आपके परिणाम में. उसके बाद ही इसमें आपके परिणाम में फर्क पड़ेगा. रस का भी फर्क पड़ेगा और दर्शनों से जो अपनत्व होता है कि मुझे हो रहा है मुझे हो रहा है उसमें भी फर्क पड़ेगा. दोनों बात का फर्क पड़ेगा. अभी जो प्रयोग से करेलो निर्णय मुठमा जाए બીજાની અસર પરિણતિ ઉપર નથી આવતી લબ્ધ પરિણતિ ઉપર યથાર્થ પ્રકારે પ્રયોગ નથી હોતો. મૂળમાં તો અનેક પ્રકારની ખામી છે. એક તો કૃત્રિમ કોઈ પ્રયાસ પ્રયોગ કરતું હોય કોઈ દેખાદેખીથી કરતું હોય દરેક વ્યક્તિગત રીતે જુદી જુદી ખામીઓ હોય છે. બધાને એક સરખી ખામી નથી હોતી. હવે ખામી નથી એની ખાતરી શું ક્ષતિ નહીં હૈ ઉસકા સબૂત ક્યા હૈ કે જો પહેલે હુઆ થા વૈસા કા વૈસા બાદ મેં નહીં હોગા વહી ઉદય મેં વો ફરક तो वेदना का लिया प्रतिकूलता अनुकूलता में भी ऐसा होता है कि जिस पदार्थ से आपका मोह के परिणाम चलते थे उससे थे उसी पदार्थ में आपका मोह के परिणाम में फर्क पड़ जाएगा. तो रस का भी अनुकूलता का रस भी कम हो जाएगा और अपनत्व का या कर्ता बुद्धि का या कुछ न कुछ प्रकार से जो मूल चलता है भोक्ता बुद्धि से कुछ भी जो भी प्रकार से चलता है उसमें फर्क पड़ेगा, वो मंद हो जाएगा, वो बुद्धि मंद हो जाएगी, अभिप्राय मंद हो जाएगा। ये प्रयोग का लाभ है, ये प्रयोग का फायदा है। अगर ऐसा नहीं होता तो प्रयोग ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्रयोग करें इसलिए सब ठीक ही होता है, ऐसा नहीं होगा। प्रयोग ठीक नहीं भी होता है, कोई दमन करता है तो प्रयोग ठीक नहीं होता, अनेक प्रकार के खतरे हैं। और कोई आज प्रयोग करे फिर कितने दिन के बाद करे, तो लगातार करने की चीज है उसमें बहुत लंबा अंतर हो गया तो भी उसका असर नहीं रहेगा, क्योंकि उल्टा प्रयोग चलता है बीच में, तो ये तो प्लस माइनस हो गया ना, अपने थोड़ा प्लस किया माइनस ज्यादा किया, जैसे अपनत्व तोड़ने का कोई प्रयास किया और फिर अपनत्व तो ज्यादा कर लिया, तो नेक्स्ट टाइम आपका गड़बड़ चालू ही रहेगा। जावो न दीजिए और उसकी दरकार खुद को करनी, अगर किसी को जाता है तो उसका कोई फायदा नहीं होगा। बहुभाग लोग तो प्रयोग में आते हैं, अब प्रयोग की जहाँ चर्चा चलती है, प्रयोग की बात चलती है, वहाँ कुछ बात चलती है, तो वहाँ अनेक प्रकार है, सबका एक प्रकार नहीं है, भिन्न भिन्न प्रकार से क्षतियाँ रहती हैं। इसके लिए सत्संग के अलावा समझने का कोई साधन नहीं है। सत्संग में अपने प्रयोग के दौरान चलने वाले परिणामों की सब चर्चा हम खुली कर सकते हैं और खुली मुक्त रूप से बिना कुछ छिपाए या बिना कुछ विकृति किए प्रेजेंटेशन करना चाहिए, बताना चाहिए। तो ऐसे परिणाम प्रयोग करते हैं लेकिन परिणाम ऐसे, और अगर इसमें कोई क्षति होती है तो जो प्रयोग से में आगे बढ़े हुए हैं वो उनको मार्गदर्शन दे सकते हैं, तो ऐसे नहीं वैसा करो, ऐसे नहीं वैसे करो, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, ये सब चलता है, इस तरह से सत्य चलता है। प्रतिक्षण क्षणे क्षणे प्रतिक्षण राग थी जुदा पड़वानो अभ्यास एम ने एम चालू रखे तो सहज दशा थवानो अवसर आवे। लगातार क्षणे क्षणे माने एक लय से लगातार राग से भिन्न पड़ने का प्रैक्टिस प्रयोग चालू रखे तो सहज परिणति सहज दशा होने का अवसर आए। पहले तो ज्ञान से प्रतीत में प्रतीत में आता है, पहले तो ज्ञान से प्रतीत में समझ में विश्वास बैठता है तो प्रयोग कर सकता है, और प्रयोग में भी जो ज्ञान है वो सहज रूप से काम करने लगता है, प्रति दृढ़ होती है, ध्यान में निर्मलता आती है और मिथ्यात्मंद होता है, दूसरे अभिप्राय मंद होता है, ये सब बात होती है जैसे जैसे प्रयोग में आगे बढ़ता है। निर्मलता आती है तो वो भूमिका अनुसार है, लेकिन अपना प्रयोजन के विषय में ज्ञान सूक्ष्म और तीक्ष्ण होता है, मुमुक्षु की भूमिका में। तो सीधा प्रश्न आपका प्रश्न मैं उठाता हूँ, मुमुक्षु की भूमिका में निर्मलता किसको कहे, भले ही बुद्धि उघाड़ कम हो फिर भी निर्मलता हो सकती है, और बुद्धि उघाड़ कितनी भी ज्यादा हो निर्मलता नहीं हो सकती। तो उसका कोई खास समझने लायक कोई पॉइंट है, मुद्दा है, तो वो है कि प्रयोजन की पकड़ कितनी है। प्रयोजन के विषय में भूलते हैं कि नहीं भूलते हैं, प्रयोजन में निज प्रयोजन, जहां मुझे लागू पड़ता है भूल में या सुधार में, प्लस माइनस भूल में। शास्त्र पढ़े तो उसका ध्यान जाएगी, ये बात मेरे लायक आई, मुझे लागू होती है ऐसी बात आई। प्रवचन सुनते हैं तो उसमें भी ऐसी बात ध्यान जाएगा, लक्ष्य जाएगा, ये मेरे काम की बात आई, यहाँ मेरी गलती होती है या इस प्रकार से मुझे सुधार करना चाहिए। तो जिसको प्रयोजन का दृष्टिकोण साध्य होता है उसको ज्ञान की निर्भरता आई। तो उस ऐसे ज्ञान वाले को, ऐसी निर्मलता वाले मनुष्य को हित अहित का ख्याल रहता है, हित अहित की सूझ जाती है। हाँ, को जाता है अपने हित अहित के विषय में, वो भी कह सकते हैं अपने हित अहित के विषय में, प्रयोजन के विषय में ज्ञान जागृत है, अलर्ट है, बराबर अवधान है, बराबर परीक्षा कर सकता है, सब बात है। बस ये हाँ, ये जो प्रयोजन के विषय में तीक्ष्ण और सूक्ष्मता, जितनी तीक्ष्णता जितनी सूक्ष्मता आती है, क्योंकि हमारे परिणाम में भी दोष स्थूल भी है सूक्ष्म भी है, तो जिसको कम निर्मलता ही वो स्थूल को पकड़ेगा, जिसको अधिक निर्मलता ही वो सूक्ष्म दोष को भी पकड़ेगा, इससे अधिक निर्मलता ही तो परिणति के दोष को भी पकड़ेगा, अधिक निर्मलता ने से अभिप्राय को भी पकड़ेंगे, अधिक निर्मलता ने से रस को पकड़ेंगे, ये सब सूक्ष्म फैक्टर है परिणाम के। फिर अधिक निर्मलता ही तो ज्ञान को पकड़ेंगे, अधिक और निर्मलता ही तो ज्ञान स्वभाव को पकड़ेगा। ऐसे भूमिका अनुसार निर्मलता के भी बहुत स्तर है, अलग अलग स्तर, अलग अलग स्तर होता है। उस तरह से निर्मलता अपने योग्य जैसी निर्मलता होती है वैसा काम करती है, और ये साधन है, ये खास साधन है मुमुक्षु भूमिका में, इसके अलावा कोई साधन मुमुक्षु की भूमिका में नहीं है। ये अंतरंग साधन है, बाह्य साधन तो शास्त्र सत्संग है ही, लेकिन खुद को निर्मलता है कोई मुख्य साधन है और वही लाभ का कारण है। ये अंतरंग साधन है, चार सौ चौवालीस प्रश्न समाप्त हुआ। 445 प्रश्न जो है वो भी वेदज्ञान विषय के हैं। प्रश्न, वेद ज्ञान करवू जोईए, પણ ભેદ જ્ઞાન કરવું કેવી રીતે કે જેનાથી ધ્યાન પ્રગટ થાય? ક્યાં પ્રશ્ન હૈ કે ભેદ જ્ઞાન કરના ચાહીએ વો બાતો સમજ મેં આઈ ઓર હમ ઇસ બાત સે સહમત હૈ ભેદ જ્ઞાન કે કરના વો એક બહોત બઢિયા સાધન હૈ यानी श्रेष्ठ साधन है स्वानुभूति के लिए, ध्यान के लिए, लेकिन करना कैसे? तो वो तो ऊपर का जो प्रश्न है उसको ही दोहराया है। प्रयोगात्मक प्रकार समझाइए या करना कैसे, यानी प्रयोग करना कैसे, वो तो बात होगी। प्रश्न में भाषा अलग होगी, प्रश्न तो वो का वही चला है। वास्तव में प्रश्न तो चलता था, इसलिए गुरुदेव ने अपनी रुचि के अनुसार समय सार पर व्याख्यान 45 साल में 19 दफे किया। एक दफे शास्त्र समय सार चालू करे, कम से कम 2 वर्ष तो चले ही चले, बीच में दूसरे शास्त्र में चला है। तो 1937 से तो 1938 वर्ष तो गया ने, 38 ना 35 गुणों 34 गुणों बीजा शास्त्र में पूरा समय सार में वेद ज्ञान का विशेष भी अधिकार में बहुत चला है। इसलिए वेद ज्ञान की चर्चा गुरुदेव के श्रीमुख से बात करी, तो वहां भी लोगों को सुनने में वो बात ज्यादा आई, तो चर्चा का विषय वही बना। चर्चा का विषय वो बना इसलिए वो स्टेज में आ गए थे, वो बात तो नहीं है। उसके लिए तो क्रम चाहिए, वो क्रम का तो आज भी किसी को पता नहीं है। तो वो तो समझ सकते हैं अपन कि वो भले ही प्रयोग का प्रश्न कोई करे, अब तो लोग ऐसा कहते हैं कि प्रयोग की चर्चा गुरुदेव और बहन से करते ही नहीं थे। अभी तो क्योंकि यहाँ पर जो चर्चा चलती है वो बाहर जाती है थोड़ी, तो भी वहां तो भावनगर में तो प्रयोग की बात बहुत चलती है, लेकिन गुरुदेव कहाँ करते थे, बैंसरी कहाँ करते थे, क्योंकि वो लोग में वो चीज नहीं रही। अभी तो आधार लेते हैं गुरुदेव बैंसरी का, ये तो है कि नहीं, ये तो डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हो गया कि प्रयोग की चर्चा कैसी चली है। प्रयोग को अभ्यास कहते थे, बार बार जब भी अभ्यास से संबंध चला है, बार बार करना इसका नाम अभ्यास। चाहे पढ़ना बार बार हो तो पढ़ने का अभ्यास हुआ, और बार बार प्रयोग करो तो प्रयोग का अभ्यास हुआ। अभ्यास का मायना है प्रैक्टिस, बार बार करते रहना, उसको कहते हैं। समाधान, जीव को स्वयं को यथार्थ रुचि होनी चाहिए, तभी भेद ज्ञान होता है। पोताने यथार्थ रुचि थाय तो भेद ज्ञान थाय, जो पोताने यथार्थ रुचि थाय तो अटले वाले रुचि एटले शुं जरूर लागे, ताती जरूर लागे, तो विज्ञान करी शक, नहीं करना करी शक। आ शू काम समझाए, आ क्रम नो विषय है। विज्ञान पहला शू हो, रुचि हो, रुचि हो तो बधा स्टेज आवे, रुचि हो तो भावना, भावना थी बधा स्टेज चाले, रुचि ने भावना थी बधा स्टेज आवे। ભલે ક્રમ નો જૈણ હોય એનો કઈ વાંધો નથી, અભી જ્ઞાની હુએ સબકો પહેલે ક્રમ જાનને કો મિલા હૈ એસા નહીં મને મુવાયા, જો જો જ્ઞાની હુએ ઉસકો સબ ક્રમ કી બાત સમજ મેં પહેલે આઈ ઓર ફિર વો ક્રમ સે ચલે એસી બાત નહીં હૈ, તો કોઈ જરૂરી નહીં હૈ। સહેજ હોતા હૈ, સહેજ ક્રમ મેં આતા હૈ, ઓર ફિર મિલાન હો જાતા હૈ કે બરાબર ઇસકો ભી એસા હુઆ, ઉસકો ભી એસા હુઆ। जैसे कृपालु देव भी वेदना में आए हैं, मंत्री भी वेदना में आए हैं, सुगनी जी भी वेदना में आए हैं, तो सब जान लेते कि सभी को ऐसा ही होता है जैसा हमको हुआ वैसा सबको होता है। और उन तीनों का जो चरित्र है, जीवन चरित्र है, उस पर से जिसको वेदना आती है वो भी समझ लेता है, तो बराबर है। जो ज्ञानी को ऐसा हुआ तो हमको हुआ, वो बराबर है, हमारी लाइन ठीक चलती है, हम मिलान कर लेते हैं। तो समझ में मिले नहीं मिले, जो होता है वो सहज ऐसे ही होता है। क्यों कि ये मार्ग ऐसा वैज्ञानिक है, मोस्ट साइंटिफिक, तो वो एक तरह से चलेगा। चाहे रोटी आपके घर में बने, चाहे दूसरे के घर में बने, सबके घर में एक ही तरीके से बनेगा। सब गेहूं लाएंगे, साफ करेंगे, आटा बनाएंगे, पिंड बनाएंगे, रोटी बनेंगे और फिर फेंकेंगे, सब ऐसे करेंगे। प्रोसेस तो वही है, कहीं भी जाओ, हलवा भी 500 साल पहले भी, 1000 साल पहले भी ऐसे ही बनता था। गुरुदेव हलवा का दर्शन देते थे, उसमें भी क्रम की बात थी। हलवा का दृष्टांत में क्या कहते थे कि पहले घी में आटा सेकना पड़ेगा, तीन चीज है तो मिला ले और उसको सगड़ी पे चूल्हे पे चढ़ा दे, ऐसा नहीं चलेगा। मैंने अक्रम से काम नहीं होगा, ये विज्ञान है, साइंस से काम होगा। 1000 साल पहले ऐसे बनता है, अभी ऐसे ही बनता है, 1000 साल के बाद वैसे ही बनेगा, हलवा दूसरी तरह से नहीं बनेगा। इसका मतलब क्या, काम एक ही पद्धति से होता है, दूसरी पद्धति से होता ही। एक हो इतरं काल मां परमारथ, भाषा हरेक की अलग अलग है, विषय प्रतिपादन जो है वो एक ही है, उसमें कोई फर्क नहीं है। ज्ञान में यथार्थ समझ जब आती है तब प्रयोजन जो सुख दुख का है उस विषय में अपनी जरूरत समझ में आती है। रुचि का मूल जरूरत में है, और जरूरत मालूम पड़ना नहीं पड़ना वो ज्ञान में है। इसलिए ज्ञान ही साधन है आखिर में, तो दूसरा कोई साधन नहीं। और इसलिए तो ये सत्संग स्वाध्याय का जो व्यवहार है मूल मार्ग की परंपरा में, सत्संग स्वाध्याय का जो व्यवहार है कि क्यों कि ज्ञान ही साधन है, दूसरा कोई साधन नहीं है। और ज्ञान के लिए बाह्य साधन है, सत्संग स्वाध्याय है वो बाह्य साधन है। ये तो अनादि परंपरा में 200 साल पहले टोडरमल जी जयपुर में स्वाध्याय कराते थे, सत्संग स्वाध्याय कराते थे, वो बड़ा मंदिर है, तेरा मन के मंदिर में जोरी बाजार में है, वो जोरी घूम गए, वहाँ हमारा भी स्वाध्याय हुआ। बोले थे कि ये मंदिर एक ऐसा है कि यहाँ कभी स्वाध्याय बंद नहीं रहा। टोडरमल जी के बाद जयचंद जी छावड़ा जो है, जिसने समय सार का भावार्थ लिखा है, वो भी ज्ञानी पुरुष है, उन्होंने यहाँ बहुत स्वाध्याय कराया है। और बाद में वहाँ कोई न कोई विद्वान स्वाध्याय चालू ही रहा है, मंदिर में स्वाध्याय बंद नहीं रहता है आज भी। बोलते अगल बगल में भी स्वाध्याय की रुचि वाले ज्ञानियों के घर ठीक प्रमाण में होंगे ऐसा लगता है। तो वहां तो ट्रेडिशन होगी, तो आज चालू भी है, परंपरा चालू है। स्वाध्याय में सत्संग में इस बात का मूल्यांकन यथार्थ रूप से आना चाहिए। समझने में कोई कठिन बात नहीं, नहीं समझ में आए कोई कठिन बात नहीं, क्यों? कि जन्म मरण का नाश करने वाला, भव भ्रमण और परिभ्रमण का नाश करने का उपाय है, जो हमारे सबसे बड़ा बड़ी समस्या है वो बात करती है। तो उसमें नहीं समझ में आए ऐसी कौन सी बात मूल्यांकन करने में, दोनों इतना बड़ा नुकसान से हम बच सकते हैं, तो इतना बड़ा नुकसान से तो बच सकते हैं, लेकिन लाभ होना ये तो अभी मैंने बताने का बाकी है। नुकसान से तो बच जाओगे, लेकिन अनंत सुख का, अनंत काल के तक प्राप्ति होने का लाभ भी इस न्याय वही उपाय में है। तो ये कोई नहीं समझ में आए ऐसी बात तो है ही नहीं, लेकिन यथार्थ रूप से सब समझ में आते हैं, आता है या नहीं, इसका मूल्यांकन सही होता है तो ये टॉप प्रायोरिटी में वो बात आती है। वरना बौद्धिक स्तर से समझते हुए भी लास्ट प्रायोरिटी में चलता है। ऐसा क्यों हुआ? बात जिसको समझ में नहीं आई वो तो संसार को मुख्य करता है और अपना माना हुआ धर्म को गौण रूप से करता रहता है। धर्म है नहीं, माना हुआ धर्म को गौण रूप से करता रहता है। लेकिन जिसको समझ में आया उसको क्यों मुख्य नहीं होता है? उसको दर्शन की तीव्रता बलवान है। कृपालु देव की भाषा में ऐसी बात है कि सच्ची बात कहने वाले देव गुरु शास्त्र सत्पुरुष मिले फिर भी जीव को लाभ नहीं हो या खुद सही दिशा में शुरुआत नहीं करे अपने कार्य की, तो समझना चाहिए कि महामोहनीय का बलवान पड़ा है। क्या समझ लिया? महामोहनी क्यों या दर्शन में होता है, एक ही महामोहनी तीव्र दर्शन है, सत्संग करता है तो भी कहा, ये बात सुनता है तो भी कहा, तो सच्चे देव गुरु शास्त्र को मानता है, सच्चा शास्त्र पढ़ता है, यथार्थ सत्संग चलता है, वहां उपस्थित रह करके सत्संग में लाभ लेता है या पार्टिसिपेट करता है, फिर भी अगर टॉप प्रायोरिटी में नहीं आता है तो उसका दर्शन वो बहुत बलवान है, ये बात साबित करने की जरूरत विश्वास है। तो बौद्धिक रीते एम के आप क्यों सही बराबर अच्छे हैं, जो नहीं एम के आप क्यों सही बराबर से पण हजी मारा परिणाम नहीं चालता काले टपाल वाचो टपाल आवी तो 25,000 કેવું લીખો તો વાત બરાબર છે, સમજાય છે, છતાં પણ મારા પરિણામ ચાલતા નથી, ઉપડતા નથી, પરિણામનું નિવેદન સ્પષ્ટ હતું, બહુ સ્પષ્ટ હતું, બને છે આવું દર્શનનું લીખો તો મારી પરિણતિ એવી તીવ્ર થઈ ગઈ છે, લખ્યું હતું ને, સ્પષ્ટ લખ્યું હતું કે મારી પરિણતિ એવી તીવ્ર થઈ ગઈ છે કે વાત તો બરાબર છે, આ કરવું જ જોઈએ ને કરી જ લેવું જોઈએ એમ લાગે છે, તો પણ મારા પરિણામ હજી નથી ચાલતા, એવી મારી પરિણતિ થઈ ગઈ, ખેદ થાય છે, પણ એ જોઈતા પ્રમાણમાં ખેદ નથી થતો. બસ ખાયા ખામી આયા છે. મોટા ભાગે આપણા ગ્રુપમાં આવેલા પરિણામને સમજતા થયા. મારા આવા પરિણામ વિપરીત ચાલે છે, ત્યાં સુધી તો આવવાનું છે, પણ એનો જે ખેદ ચાલવો જોઈએ, જે પ્રમાણમાં ચાલવો જોઈએ, એ નથી ચાલતો. એટલે સુધાર નથી આવતો. એનો અર્થ શું થાય છે કે તમે માલ લેવા જાઓ તો ઓછો લ્યો છો. તમે એમ કહો કે ભાઈ આ શાક છે 20 રૂપિયા કિલો, તો લે 20 રૂપિયા. પછી ઓલો ઓછું તોડે તો 900 ગ્રામ તોડે તો 850 ગ્રામ તોડે તો 0.25 કિલો તોડે તો લ્યો તમે પૂરા પૈસા આપું છું. તોલ તો પૂરો થવો જોઈએ ને મને. હું તને 19 આપતો હોય તો તું 19 રૂપિયાનો માલ દે, પણ હું તને 20 પૂરા આપું છું, એ પૈસો ઓછો નથી દેતો, પછી હું કરવાનું છું? એટલે કઠણ તો લાગવાનું, પણ જે જ્ઞાનીઓએ સાતમી નરકી નારક નારકી સંમત કરી છે દર્શન મોહ તોડવા માટે, એ નારકીના દુઃખ પાએ, સાતમી નારકીના દુઃખ પાએ આ પ્રયોગની કઠણાઈ શું છે? કાંઈ નથી, કરોડોમાં અવેજમાં ભાગે નથી. એને એને વિચાર જ શું કરવાનો હોય, એનો વિકલ્પ જ શું હોય? કાંઈ નહીં, એ પોતે જરાક જોર કરતો નથી, થોડોક જોર કરવાનો, કાંઈ છે જ નહીં. હવે આ ચા વગર નો હાલે ને હું શીખ્યો છે. પાછળ ડોળું પાણી છે કે બીજું કઈ છે, પણ નથી હાલતું એને શું દેખાતું? પણ માથું કરે કાયમ માથું જોડે ટોક્સિકેશન થઈ ગયું છે. એને કથન છે ચા પીને જેને ટોક્સિકેશન કર્યું છે બોડીમાં, એને એ ટોક્સિક નિકોટેન અંદરથી માગે છે, ઝેર ઝેરને માગે છે, જેમ અફીણવાળાને અફીણ માગે એવું. એનો રસ્તો છે, અફીણમાં તો બહુ જોરદાર છે ઝેર, તો એ તો સીધું તો કોઈ છોડી જ ન શકે, કાં તો હજી એક ઝટકે છૂટી એ જાય. અફીણ ન છૂટે, અફીણ જો એક ઝટકે છોડે તો મરી જાય, નાડું તૂટી જાય. પણ એનો રસ્તો છે, ગ્રેજ્યુઅલી એનું પ્રમાણ ધીમે ધીમે ઓછું કરી નાખે. દરેક વાતનો રસ્તો તો છે, નથી એવું કઈ નથી, પણ કરવું જ છે એવો બળવાન નિર્ણય જોઈએ. નિર્ણયના બળવાનપણામાં દરેક કાર્ય સહેલા થઈ જાય છે. કોઈ પણ કાર્યના બળવાન નિર્ણયમાં કાર્ય સહેલું થઈ જાય છે, એનો પ્રિન્સિપલ છે. એક સિદ્ધાંતિક સૂત્ર જેવો વિષય છે કે બળવાન નિર્ણયના કરવા યોગ્ય કાર્ય સુગમ થઈ જાય છે, સુલભ થાય છે. માટે જો વાત સમજાણી હોય તો નિર્ણય બળવાન કરવો. જે કઈ ખામી છે ને એ નિર્ણયમાં ઢીલો છે. ત્યાં जो प्रत्युत्तर दिया है उसमें सबसे पहले बात रुचि की गई है। रुचि भी मुमुक्ष की भूमिका का एक महत्वपूर्ण परिणाम है, और जिसको रुचि होती है उसको समझ यथार्थ हुई, ये यथार्थ समझ का इंडिकेशन है। जैसे स्टेशन पे इंडिकेटर में आता है ना, ये ट्रेन इस प्लेटफॉर्म पर इस टाइम पर आएगी, ऐसा ये रुचि है कि ज्ञान का इंडिकेटर है। यथार्थ समझ हुई तो रुचि होगी, जिसकी समझ यथार्थ उसको रुचि होती ही है, अगर रुचि नहीं हुई तो उसकी समझ तो समझ ही नहीं है। समझ हुई नहीं हुई बराबर है। रुचि थाय तो भेद ज्ञान सुधीना बुद्धा स्टेज आवे, तो भेद ज्ञान थाय नो अर्थ के तो भेद ज्ञान सुधीना बुद्धा स्टेज आवे, अने भेद ज्ञान की सानुभूति। इसलिए रुचि नो अनुसंधान सम्यक दर्शन सुधी है। छ ढाला में तो आत्मरुचि ने सम्यक दर्शन कीधु दौलत राम जी, शब्द मने बराबर याद नहीं पर भाव बराबर याद है। आत्मरुचि सम्यक तो भला है, परद्रव्य में परद्रव्य से भिन्न आप में परद्रव्य थी भिन्न एवो पोते एमां जे आत्मा ने रुचि ते सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन नु बीजु नाम आत्मरुचि है, आत्मरुचि नु बीजु नाम सम्यक दर्शन। ધારા તો દિગંબર મોઢે કરાવી દે છે, કંઠસ્થ કરાવી દે છે, ઘણી બહુ મહત્વપૂર્ણ વાતો નથી સીધો ઉપરાંત અનંતકાળથી વિકલ્પમાં ને વિકલ્પમાં ચાલ્યો જાય છે, પણ જો તેની રુચિ યથાર્થ હોય તો ભેદ નામ થાય। રુચિના વિષયમાં જ વિશેષ વાત કરીશું। Somebody fix that.
Ramano Maya.